प्यारे भाइयों और बहनों जो प्रभु में मेरे साथ हैं, आज एक बड़ा ही खास दिन है और हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं कि हम 2023 में कदम रख सकते हैं प्रभु के आशीर्वाद से और उसके वरदान से। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कि बहुत सारी दुआएं और मेल के द्वारा और फोन के द्वारा और ईमेल के द्वारा मुझसे कहीं और मुझे दी, क्योंकि मेरे लिए भी एक बहुत अत्यंत उत्तम और खास दिन है। मैं भी 79 साल यानी 79 से 90वें साल में कदम रखा और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दिया इन सभी सालों में। और खास तौर पर मैंने तो एक लेटर तैयार किया था जिसमें के 25 आयतें थी वचन की, कि वो इंटरनेट पर डाली जाएं, जिससे कि हर एक नए साल में उन आयतों को, उस वचन को के पढ़ सके कि प्रभु ने मेरे मन में क्या बातें डाली। पर फिर एक फैसला ये आया कि हम इन बातों को जो मैं कह रहा था अभी, इनको हम आज पढ़ेंगे और हम सबको खुदावन की, प्रभु की वो सारी आशीषें मांगते हैं। और मैं भाई बोक से कहूंगा कि अब वो पढ़ना शुरू करें, तब सबको इस चीज की समझ आएगी कि हम क्या कह रहे हैं और अब पढ़ सकते हैं। अब जानते हैं और उस खुदावन की दुल्हन कलीसिया को मैं सभी भाई बहनों को सारे संसार में हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं जिन्होंने के खुदावन के इस शुद्ध वचन को सुना है और आज उसका अनुभव कर रहे हैं और उस रैप्चर की तैयारी में मगन हैं। और प्रभु के और इशाया 55 से मैं पढ़ रहा हूं और 55 और 11 आपको पढ़ रहा हूं। इशाया 55:11 को उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मुंह से निकलता है, पर व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परन जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा, और वो सफल करेगा। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि हम इस बात को सचमुच विश्वास कर सकते हैं अपने दिलों से कि हम सब कुछ जो हमको प्रभु ने कहा वो पूरा होगा, और वो जरूरी है कि वो पूरा हो, क्योंकि खुदावन का वचन कभी भी व्यर्थ वापस ना लौटेगा। वो दुल्हन के अंदर वो सारी चीजें कामिल कर देगा, पूरी कर देगा जो कि जरूरी है, जिससे कि हम अपने आप को तैयार कर सकें। और अब अगला वचन, अब देखिए ये जो आयतें मैं पढ़ रहा हूं, ये आयतें ये बता रही हैं कि प्रभु हमसे क्या आशा करता है, हमसे क्या उम्मीद करता है, जिससे कि ये सारी बातें हमारे जीवन में पूरी हो सकें जो जैसे हम उससे चाहते हैं, और वो हमें क्या देना चाहता है अपने फजल और अनुग्रह के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं जिससे कि अब हम तैयार हो सके जब वो आता है। प्रभु का आना ये तो सारे विश्वासियों की आशा शुरू से रही है। और यूहन्ना 14 में और उसकी दूसरी और तीसरी आयत में हमारे प्रभु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, इसीलिए मैं जाता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जाके स्थान यानी जगह तैयार करूं, मकान तैयार करूं, और अगर मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जाकर तैयार करता हूं तो मैं वापस आकर यकीनन तुम्हें ले जाऊंगा, मैं अपने साथ तुम्हें ले जाऊंगा, जिससे कि जहां पर मैं हूं वहां तुम भी रह सको। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो इस वचन के लिए। ये देखिए हम कितने ज्यादा धन्यवादी हो सकते हैं कि हम प्रभु के वचन को विश्वास कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि ये एक सच्चाई, एक वास्तविकता होने जा रहा है कि प्रभु आएगा और दोबारा आएगा और हमको अपने साथ अपने उस मकाम में लेकर जाएगा जिससे कि हम प्रभु के साथ रह सकें हमेशा हमेशा के लिए। और वचन में लिखा है दूसरे प्रभु की दूसरी आमद के बारे में, इसके बारे में बार बार जोर देकर कहा गया है प्रभु की आमद के बारे में, और इसलिए प्रभु हमारे लिए एक बार ही उसका बलिदान दे दिया गया, और उस और जो उसकी तरफ ताकते हैं, जो उसके लिए उसकी ओर ताकते हैं आशा लेकर, वो दोबारा से उनके लिए आएगा जिससे कि उनका उद्धार हो सके, इब्रानियों 9:28। और हम वो हैं जो कि उस आशा से उसकी ओर ताकते हैं, जो अपने आप को तैयारी रखते हैं, और हम इस बात की तैयारी रखते हैं कि हम उस नए वाचा के लहू को अपने ऊपर ले लें, और हम उसका धन्यवाद करते रहें कि हम प्रभु की आत्मा का धन्यवाद करते हैं जो हमें आत्मिक तौर पर हमारी अगुवाई करता है। अब देखिए इनोक के बारे में लिखा है कि वो विश्वास के द्वारा वो बदल गया, वो इस संसार से कूच कर गया और इस संसार में ना पाया गया, उठा लिया गया, क्योंकि क्योंकि प्रभु ने उसको यहां से बुलाकर उठा लिया था, और इससे पहले कि उठाया जाता ये उसकी गवाही थी कि वो प्रभु को खुदावंत को प्रसन्न करता था। इब्रानियों 11:5, प्रभु हमको भी ये आशीष दे, और 2 मत्ती 3:17 में लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं, और मत्ती 17 में लिखा है और उसकी 5वीं आयत में वहां फिर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें कि मैं अति प्रसन्न हूं। इसकी सुनो, और आज जो उसकी आवाज को सुनते हैं उन पर प्रभु का अच्छा मन, प्रभु की खुशी उनको मिलती है। और देखिए आगे पढ़ते हैं, और प्रभु ने उन सारी चीजों के बारे में बताया जो कि होने वाली हैं अंत समय में, इससे पहले कि प्रभु की दूसरी आमद हो, चाहे वो इसराइल के बारे में हो या कलीसिया के बारे में हो और जो संसार के बारे में हो। और जैसा उसने कहा, और उसने उस जैतून के पहाड़ पर कहा, और तब चेले उसके पास आए, व्यक्तिगत रूप से उसके पास आए और कहने लगे, बता ये चीजें कब होंगी और तेरे आने का, तेरे आगमन का चिन्ह निशान क्या होगा, और इस संसार के खात्मे का, अंत का क्या निशान होगा और कब होगा। यीशु ने कहा, ध्यान रखो, चेतावनी दी कि तुम्हें कोई धोखा ना दे पाए। उसने लड़ाइयों के बारे में बताया, अकाल के बारे में बताया, भूकंप के बारे में बताया, और बीमारियों के बारे में बताया। और मत्ती 24 में हम पढ़ते हैं और 3 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ते हैं और उसने खास तौर पे बताया। और ये जो ये सुसमाचार का प्रचार संसार में पूरे संसार में प्रचार किया जाएगा गवाही के तौर पर सारे देशों में सारे राष्ट्रों में, उसके बाद अंत आ जाएगा। मत्ती 24 और 14 या अब हम कहते हैं या बताते हैं, अब हम बड़े अच्छे साफ दिल से इस बात को बयान करते हैं कि प्रभु हमारा उसने हमें अनुग्रह दिया कि हमारे समय में ये जो प्रभु का समाचार है ये प्रचार किया जा सका और सारे संसार में पहली बार 2000 सालों के बाद इसका इस प्रकार से प्रचार हो सका। और जितने भी सुधार के काम हुए आज तक, बहुत सारी बातें कुछ बातें बताई गई प्रचार की गई, पर यह कभी नहीं हुआ कि प्रभु के ये खुदाइयत और प्रभु भोज इन चीजों के बारे में कभी नहीं, ये जो प्रारंभिक बातें थी ये कभी प्रचार नहीं करी गई। ये आत्मिक सुसमाचार प्रचार किया गया इस समय में, और जैसा कि वो प्रारंभ में और शुरुआत में था, खुदा ने भाई ब्रनम को इस्तेमाल किया और इसको हमारे पास लाने के लिए उन्होंने भाई ब्रनम को इस्तेमाल किया, फिर खुदा ने परमेश्वर ने मुझे भी इस्तेमाल किया कि ये जो सुसमाचार है उद्धार का, ये सारी दुनिया में उसी अपने प्रारंभिक रूप में, अपने ओरिजिनल रूप में, वास्तविक रूप में प्रचार किया जा सके। और अब अंत आने वाला है और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम इस काम के लिए, इस प्रभु के इस वचन के काम को पूरा करने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और लूका 21 और 28 में कहता है, प्रभु ने कहा, उसने अपने लोगों से कहा और उन चीजों के बारे में जो आखिरियत में होने वाली है, अंत में होने वाली है, प्रभु ने बताया। और जब ये चीजें होने लगे तब ऊपर नजर उठाकर देखो और अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि अब तुम्हारा उद्धार का काम बहुत नजदीक है। इससे पहले कि उसकी वापसी हो, हर चीज को वापस बहाली की हालत में होना पड़ेगा, जैसा कि शुरुआत में था। जैसा कि प्रेरितों के काम उसके 3 और 21 में लिखा है, प्रेरितों के काम 3:21 में लिखा है, प्रेरितों के काम 3:21 में लिखा है, जहां लिखा है, अवश्य है कि वो स्वर्ग में तब तक रहे जब तक सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। खुदा ने जो कहा अपने नबियों भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और प्रभु ने उन सभी चीजों को अपने चेलों के द्वारा साबित कर दिया, उनके मुख से बुलवा दिया। पुराने और नए नियम का दोनों का संबंध एक है, दोनों जुड़े हुए हैं, एक जगह पर वाचाएं हैं और यहाँ पर उन वाचाओं और उन वादों का पूरा होना है नए नियम में। और हम प्रभु के सच्चे दिल से धन्यवादी हैं कि हम इन बातों को सिखा सकते हैं, इन पर विश्वास कर सकते हैं और बपतिस्मा ले सकते हैं और सब चीजें वैसे ही बता सकते हैं जैसे कि प्रारंभ में थी, जैसे कि हमारे भाई बहनों ने शुरू में 2000 साल पहले जो उन्होंने किया, प्रारंभ में शुरुआत में किया, हम भी वही आज कर सकते हैं। प्रभु ने अपनी वाचाओं को, अपने वादों को रखा है, कायम रखा है और उसने हर चीज की बहाली करी है और वापस उस हालत में ले आया जो उसकी सही स्थिति है। ये उन वादों को भी बताता है कि अंत के समय में, अनुग्रह के अंत के समय में, इससे पहले कि वो भयानक दिन आ जाए, खुदा प्रभु जो है वो एक नबी को भेजेगा और ये वादा یہ ملاکی چار اس کے پانچویں اور چھٹی آیت میں پورا ہو گیا اور بھائی برنم کی منسٹری کے دوارا یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا. ان کے دوارا پربھو نے بچوں کے پتروں کے منوں کو پوروجوں کے منوں کی طرف بزرگوں کے منوں کی طرف پھیر دیا, جیسے کہ ریپچر ہونے کی جو جیسا کہ ہم پہلا تسلونیوں میں اور 15:4-17 میں ہم ریپچر کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور یہ ہم تجھ سے کہتے ہیں, یہ پربھو کے وچن سے خدا کے کلام سے کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ بچیں گے اور پربھو کے آنے تک زندہ رہیں گے ہم ان کو روک نہیں پائیں گے جو قبروں میں سو رہے ہیں, کیونکہ پربھو سویم آسمان سے اترے گا بادلوں میں اور وہ اونچی پکار کے ساتھ اور مہان دوت کی آواز کے ساتھ اور ترہی کے ساتھ وہ اترے گا بادلوں میں, اور جو پربھو میں مرے تھے سوئے تھے وہ سب سے پہلے جی اٹھیں گے, اور ہم جو اس سمے جیوت رہیں گے وہ بھی پربھو کے ساتھ ہم بدل جائیں گے, اور ہم ان کے ساتھ جو جی اٹھیں گے پربھو کے ساتھ ہم اکٹھے بادلوں میں ملیں گے, اور اس پرکار سے ہم پربھو کے ساتھ اس سمے کے بعد سے ہمیشہ ہمیشہ تک رہیں گے. پربھو کے نام کو جلال ملے, اس کے نام کو مہیما ملے. ہم یہ تجھ سے کہتے ہیں, وچن کہتا ہے کہ جو پنروتھان ہے, جی اٹھنا ہے, ہمارے پربھو کا جی اٹھنا, ہمارے پربھو کا پنروتھان اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ جو وعدہ اس نے کیا ہے اور اس کا اٹھایا جانا اس بات کی گارنٹی ہے, نشچے ہے کہ ہم کو بھی اسی پرکار سے اٹھایا جائے گا اور مہیما میں ہم پہنچ جائیں گے اور ریپچر کے بعد. ہالیلویا. اور پربھو کے نام کی مہیما ہو, پرشنسا ہو. اور اب آگے پڑھتے ہیں فلپیوں 3 اور 21 اور 22. فلپیوں 3:21-22. فلپیوں 3:21-22. اپنی شکتی کے اس پربھاؤ کے انوسار جس کے دوارا وہ سب وستوؤں کو اپنے بس میں کر لیتا ہے, ہماری دین دیہ کا روپ بدل کر اپنی مہیما کے دیہ کے انکول بنا دے گا. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آگے والا جو وچن پڑھا جا رہا ہے وہ ہماری زندگی میں پورا ہو جائے. پر اگر جو پربھو یسو کو جس نے جلایا وہ آتما ہے جس نے پربھو کو جلایا, اگر وہ آتما اگر تم پر ہے تو وہ بھی تم کو جگا دے گا, اٹھا دے گا پنروتھان میں. رومیو 8:11 میں بولتا ہے. ہم اس کو آمین کہتے ہیں. یہاں لکھا ہے کلام میں, اور یہ اس پرکار سے ہی ہوگا. یہاں پر ضروری بات یہ ہے کہ پربھو کا آتما ہمارے اندر بسے, اور ہم کہ خالی گفٹ ہی نہیں, خالی وردان ہی نہیں, خالی پر وہ سارے پھل جو آتما کے پھل ہیں وہ ہمارے اندر پائے جائیں. اور ہم پربھو کا دھنیواد کرتے ہیں کہ وہ ایسا دیکھے گا, ایسا ہونے دے گا اور کرے گا کہ پربھو کا آتما ہمارے اندر باس کر سکے, ہمارے اندر بس سکے, جس سے کہ ہمارے جیون کمپلیٹلی پورے طور پر سمرپت ہو جائیں, اس کے حوالے ہو جائیں, और तब वो आत्मा, प्रभु का आत्मा जब हम में होगा तब वो हमको बदल डालेगा, जैसा कि हमारे प्रभु के साथ हुआ। उसका जो शरीर था, उसकी जो शरीर था, मृतक शरीर, मरा हुआ जो शरीर था, वो जी उठकर महिमा में चला गया, जलाल में चला गया। और हम भी, जब हम भी इसी प्रकार से बदल जाएंगे और उस महिमा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और ये वादा जो है, ये हमारे लिए वास्तविक सच्चाई का अनुभव बन जाएगा। और इसी प्रकार से हमको ये उत्साह बताया गया, हमारा को हौसला दिया गया है कि हमें सच्चाई में खड़े रहना है और हमें प्रभु के काम को कंप्लीट करने के लिए खड़ा रहना है कि पवित्र आत्मा की शक्ति से हम उसमें बने रहें। और हमें बड़ा पेशेंट रहना है और प्रभु के आने की बाट जोनी है। और हमें, आप देखिए, जो किसान जो है वो जमीन के फल की, फसल की इंतजार करता है, जब तक के उसे पहली और आखिरी बारिश ना मिल जाए। और हम भी उसी प्रकार से तसल्ली में रहें, पेशेंस में रहें कि प्रभु का आना बहुत नजदीक हो रहा है। ये और यकूब और 5:7-8, और ध्यान रखो, यकूब 5:7-8, इसलिए भाइयों प्रभु के आगमन तक के धीरज रखो। किसान पृथ्वी की बहुमूल फसल की आशा रखता है और प्रथम और अंतिम वर्षा तक धीरज रखता है। तुम भी धीरज धरो और हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन नजदीक है। अब देखिए, प्रभु का धन्यवाद हो कि ये वादे जो पुराने नियम में दिए गए और नए नियम में भी दोहराए गए, वो पहली और आखिरी बारिश को पूरा करेगा। और एक साथ पहली और आखिरी बारिश होगी और पवित्र आत्मा का काम, ब्राइड जो कलीसिया है उसमें पूरा होगा और ब्राइड के सभी मेंबर उसके भागी होंगे। क्योंकि किसी को भी उसके आने का वक्त नहीं पता। हमारे को ये चेतावनी दी गई है कि हमें हर समय तैयार रहना है, इसलिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि ऐसे समय में वो आएगा, प्रभु ऐसे समय में आएगा जबकि कोई उसको एक्सपेक्ट नहीं करेगा, उसकी आशा भी नहीं करेगा, और वो आ जाएगा। मत्ती 24 में लिखा है। हमें इसे बड़ी गंभीरता और संजीदगी से इस बात को लेना है अपने मनों में, इसलिए हम अपने आप को बड़े भय से उस वादे को, ऐसा ना हो कि हम उसके विश्राम में शामिल ना हो पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं। प्रभु हम सबको ऐसा फजल दे कि कोई जो आज विश्वास करता है अपने सच्चे मन से, वो सच्चाई में जो विश्वास करता है, और उस सेविकाई को, उस खिदमत को भी जो खुदा ने भाई ब्रैनम को दी थी, और इस आखिरी समय में इस आखिरी मैसेज को लाने के लिए और बहाली करने के लिए, जो इन सारी चीजों पर विश्वास करता है, जो इन सारी चीजों पर को अपने सारे मन से विश्वास करता है, सारे दिल से विश्वास करता है और उनका वास्तविक रूप में अनुभव अपने जीवन में करता है, ये वो समय है भाई और बहनों कि जब हमें उन सारी चीजों को, जो कम गर्म और कम ठंडा वाली बातें, उनको अपने अपने जीवन से निकाल दें और हमें वो आग भड़क उठे, वो चिंगारी भड़क उठे, जिससे कि हम इस बात को संजीदगी से और गंभीरता से लेके सकें और प्रभु के जितने वादे हैं वो हमारे जीवन में पूरे हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे लिए ये सुसमाचार प्रचार किया गया और उनके लिए भी, पर प्रभु का वचन उनको, प्रभु के वचन से उनको कोई फायदा नहीं हुआ जिन्होंने विश्वास नहीं किया, और ना कोई विश्वास ही बना उनके अंदर। इब्रानियों 4 में लिखा है, इब्रानियों 4:1-2 में लिखा है, अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और तब वो सारी बातें उसके जीवन में पूरी हुई। हम भी प्रभु के वचनों पर विचार करते हैं तो हमारे जीवन में भी वो पूरे होंगे, जैसे कि पौलुस को, जिसने प्रभु को, प्रभु की सेवा को गंभीरता से लिया, संजीदगी से। और मैं ये कहूंगा, मैं ये बताऊंगा कि अब जो आयतें हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं सारे विश्वासी भाइयों को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भाइयों तुमसे ये कहता हूं कि प्रभु की दया और अनुग्रह के द्वारा कि तुम अपने जीवनों को खुदावन के सामने, जो कि तुम्हारी सेवा है, उसको पूरी तरीके से दो, और संसार में सारे संसार में ना फंसे रहो, बल्कि बदल जाओ इस संसार की बातों से, निकल के बाहर निकल जाओ, जिससे कि ये बातें पूरी हो जाए, कि जिससे कि प्रभु की जो वास्तविक इच्छा है वो पूरी हो जाए। रोमियो बारह एक और दो। और ये बातें, और इसलिए भाइयों कि हम ये कह सकें अपने सच्चे मन से कि प्रभु तेरी कामिल मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, हम तो तेरे आगे समर्पित हैं, हम तेरे आगे अपने आप को रखते हैं, और हम अपने आत्मा और प्राण को और शरीर को तेरे आगे रखते हैं। प्रभु तो हमारे जीवन में वो सारे कार्य कर जो तेरी इच्छा है, और तभी ये हमारे जीवन में होगा, क्योंकि प्रभु ने ये वादा किया है, इसलिए अवश्य पूरा होगा। और वो अंत में हमारे जीवनों को, हमारे मनों को ऐसा बदल डाले कि हम पवित्र हो जाएं, हम में कोई दाग और धब्बा ना पाया जाए। वो हमारा पिता है, और अपने आगमन के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में, तब वो अपने संतों के साथ जब आएगा, पहला तिसलोनियों 3:13, पहला तिसलोनियन 1:13, फिलिपियों 2:16 कि मसीह के दिन घमंड करने का कारण हो जाए, ना मेरा दौड़ना ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मैं तुम सबके साथ आनंद करता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस महिमा के दिन के लिए, फिलिपियों 1:9-11। मेरे भाई और बहनों, ये जो वचन है जो हमने अभी पढ़े, इनको हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, और प्रभु से पूछें, दरियाफ्त करें कि ये बातें हमारे जीवन में एक वास्तविकता बन जाएं, ये जरूर हमारे जीवन में कामिल हो जाएं, जिससे कि हम प्रभु के सामने बगैर दाग धब्बा के पवित्रता की हालत में, और प्रभु यीशु के लहू में धो करके पवित्र किए जाएंगे, और प्रभु के वचन के द्वारा हमारे, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई हो, और ये सारी बातें हमारे जीवन में आत्मिक तौर पर ये अनुभव हो जाए, ये वास्तविकता बन जाए, रियलिटी बन जाए। ये हमारी इच्छा है, क्योंकि ये सारी बातें हमारे जीवन में पूरी तरह से कामिल हो जाए, वास्तविकता बन जाए। और जो शांति का प्रभु है वो हमारे को पवित्र कर सके। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी 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 बॉडी, हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा प्राण बगैर कलंक के, बगैर दाग के प्रभु के सामने समर्पित किया जाए। ऐसा पहला थिसलोनिया और 5:23 में लिखा है। और अब हे मेरे भाइयों, प्रभु में बने रहो कि जब वो पहला थिसलोनिया 5:13 में लिखा है, पहला यूहन्ना 2:28 प्रभु हम सबको बड़ा अनुग्रह दे कि कोई भी पीछे ना रह जाए। मैं ये विश्वास करता हूं कि जब महिमा में कोई भी एक भी कुर्सी खाली ना रह जाए, प्रभु हम सब को ले जाए और हम उस भोज में, उस आत्मिक भोज में प्रभु के साथ हमेशा तक बैठे। और वो बड़ी भीड़ जो प्रभु के साथ, मैंने तो रैप्चर को अपने दर्शन में देखा, मैंने देखा कि वो अनगिनत लोग जो प्रभु के दरबार में पाए जाते हैं, और मैंने इसका अनुभव किया। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवादी हूँ कि हम इस बात का विश्वास कर सकें कि ये वास्तव में ये जरूरी ये होने वाला है। और पर उसके होने का समय और घड़ी सिर्फ प्रभु जानता है। पर हमारी क्या आशा है, हमारी क्या आशा है कि हमारा वो मुकुट जो प्रसन्नता का मुकुट है, वो हमारे प्रभु के सामने ये पूरा होगा। और उसके सामने जब वो आएगा तब ये पूरा होगा। पहला थिसलोनियों 2:19 ये उन लोगों के बारे में बताता है जिनको प्रभु ने चुन लिया और प्राचीन काल से पहले ही चुन लिया। और उनको प्रेरित कहता है बड़े गंभीर शब्दों में, और इफिसियो 4:30 में कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि इफिसियो 4:30 में लिखा है, जिससे कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर की गई है, जो ब्राइड चर्च के मेंबर हैं, उसके सदस्य हैं, जो उसमें पाए जाते हैं, ये बातें उनके लिए लिखी गई हैं कि हम पवित्र आत्मा को दुखित या शोकित ना करें। और ऐसा ना हो कि हम आज्ञा ना मानने के कारण उसको शोकित करें। मैं ये जानता हूँ, मेरा सच्चा विश्वास है, जो प्रेरित ने यहाँ पर लिखा, अपने भाइयों और बहनों को अपने समय में लिखा, वो आज भी हमारे ऊपर लागू होता है। और हम इस चीज के में हमारा निश्चय है कि वो जिसने के हमारे अंदर एक अच्छा काम शुरू किया है, वो हमारे जीवन में तब तक करता रहेगा। फिलिपियो 1:6 में लिखा है, भाई ब्रैनम ने वो सारा का सारा काम किया। और उन्होंने वो जो संदेश था वो प्रभु के आने तक रखा रहा। मैं प्रभु के द्वारा मेरा प्रभु ने मुझे यूज किया, जिससे कि ये आखिरी समय का मैसेज, ये निर्धारित समय के लिए ये संदेश था, ये सारे संसार में प्रचार किया जा सके। और जो सेवक भाई लोग हैं, ये यही संदेश लेकर जाते हैं और यही आत्मिक बातें वो बांटते हैं आपस में। और इस प्रकार से जो ब्राइड कलीसिया है वो एक एकता के अंदर लाई गई और वो उस वचन में पाई जाती है। भाइयों और बहनों, ये मैं बड़ी सच्चाई से और बड़े गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि मैं मसीहों से ये बात पूछता हूं कि क्या आपने कभी सुना ये कोई ऐसा भाई है जो आगे आए और भाई ब्रहणम की मिनिस्ट्री के बाद वो आगे आए या सेवकाई में आगे आए और वो ये बता सके, वो ये यकीन से बता सके, निश्चय से बता सके कि उसको कब बुलाया गया, कौन सा दिन था जब उसकी कॉल आई, कौन से दिन उसको प्रभु ने आवाज देकर बुलाया। क्या कोई ऐसा भाई है, क्या इस संसार में कोई ऐसा भाई किसी देश में किसी स्थान पर पाया जाता है जो भाई ब्रहणम के चले जाने के बाद आज ये निश्चय से कह सकता है, दावे से कह सकता है कि मुझे प्रभु ने बुलाया और प्रभु ने मुझे आवाज दी और मुझे ये आज्ञा दी और मुझे ये सेवा दी। क्या है कोई आज इस चीज का दावा कर सकता है कि मुझे जाना होगा, नगर नगर जाना होगा, देश देश जाना होगा और इस आत्मिक भोजन को बांटना होगा, जैसा भाई ब्रनम ने 3 दिसंबर 1962 को कहा था। वो आज वो फिर से कहा जाना चाहिए कि एक बुलाहट जो इस प्रकार की है, ये ऐसे 2 या 3 लोगों के पास नहीं आती, ये सिर्फ केवल और केवल एक के पास आती है। केवल एक ही मूसा था, केवल एक ही यहोशू था, एक ही एलिया था, एक ही अलीशा था और हमेशा हमेशा एक एक बंदे को एक एक समय पर प्रभु बुलाता है। और आज जो जो भाई ब्रनम की उस सेविकाई को रिकॉग्नाइज करते हैं और आज वो उसी मिनिस्ट्री के हिस्से पाए जाते हैं और वही बातें बताएंगे। और वहां लिखा है कि जब वो खरीदने के लिए गए तब दूल्हा आ गया और जो तैयार थे वो तो भोज में प्रभु के साथ चले गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। मत्ती 25:10 में लिखा है। देखो मैं बहुत जल्दी आता हूं और तब आत्मा और दुल्हन ने कहा हे प्रभु तू आ, हे प्रभु तू आ। रेवलेशन प्रकाशित वाक 12:17 और 2023 का जो समय है हम इसमें बड़े बड़े महान कार्यों के बारे में सोच सकते हैं और उसके उसके प्रभु के जो वचन है, जो वादे हमारे जीवन में पूरे होंगे और हमें इस चीज का आश्वासन है और वादा है कि उसका वचन वो सारी की सारी बातें को कामिल करेगा, बहाल करेगा उन सभी कामों के लिए जिसके लिए उसका वचन भेजा गया और वो सारी बातें पूरी करेगा जो प्रभु ने वादा किया है। आमीन, आमीन। हम प्रभु के बड़े बड़े आभारी और धन्यवादी हैं कि हम इस बात को जोर देकर कह सकते हैं, बार बार कह सकते हैं। अब देखिए हम उन सारे वर्षों को, सारे वक्त को, सारे सालों को 1966 से लेके अब तक के उन सालों को देख सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम वो सभी लोगों के लोग जो वो इसमें शामिल हैं। और जैसा कि लिखा है क्योंकि प्रभु के राज का, परमेश्वर का राज का ये सुसमाचार, ये आत्मिक वचन जो है उद्धार का, ये सारी सारे लोगों में, सारे संसार में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। और अंत आएगा, प्रभु सिर्फ इंतजार कर रहा है जब तक के वो आखिरी जन जो है वो शामिल ना हो जाए। पर अभी तक जितनी बातें हैं वो पूरी हो चुकी है, पर अब सब चीजों का एक अंत आना जरूरी है और हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं कि हमें कोई कोई डेट या कोई दिनांक या कोई तारीखें फिक्स नहीं करनी, पर हम सबको कंटिन्यू करना है, हम सबको आगे बढ़ते रहना है। और हम और ये बात है कि हमारे जीवनों में ये चीजें बनी रहें, जुड़ी रहें और हमारी तैयारी जारी रहे। ये मेरे दिल में बोझ है जिसको मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने नवयुवक हैं, जो जवान हैं और जो और विश्वास करने वाले जो परिवार हैं और जो बच्चे जब वो बड़े हो जाते हैं और जो जवान बच्चे हैं जब वो वयस्क बन जाते हैं, हमने 1000 जर्मन बाइबल्स और प्रिंट करी हैं। और मैं सारे भाइयों और बहनों को जो जर्मन भाषा पढ़ सकते हैं कि वो जो इन कॉपियों को लेना चाहते हैं वो इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इसको और ये और मुफ्त में ये फ्री आपको दी जाएगी। और प्रभु आपको ऐसा अनुग्रह दे कि सबके पास अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाए, अनुभव हो जाए, जैसा भाई ब्रनम ने कहा, क्योंकि प्रभु के सिर्फ बेटे और बेटियां हैं, उसके कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं, उसके कोई नाती पोते नहीं, जो के विश्वासियों के घरों में पैदा हुए हैं उनके अंदर भी वही अनुभव होना चाहिए उद्धार का। और यहां देखिए कितनी गंभीर बात है और ये हमें बताई जाती है, जैसा अभी पढ़ा गया, जो तैयार थे, जो रेडी थे, वही उस विवाह के भोज में शामिल हो पाए और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। और ये आखिरी पुकार अभी चल रही है, अभी आखिरी संदेश चल रहा है और ये सारी संसार में प्रचार किया जा चुका है। और अब मैं ये कहता हूं एक बार फिर से कि हम अपने अपने अंदर से वो सारी की सारी जो नीम हकीम बातें हैं उनको हटा दें और प्रभु की सेवा में लग जाएं और ऐसा एक भी सिंगल मीटिंग हम मिस ना करें और हम इस चीज का अनुभव वास्तविक तौर पे अनुभव करें कि हमारी तैयारी कहाँ खड़ी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हरेक वचन में, हरेक सरमन में, किसी न किसी रूप में हरेक के लिए कुछ ना कुछ पाया जाता है। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो कि हम ये सारी बातें वास्तविक रूप में, व्यक्तिगत रूप में समझ सकते हैं। मैंने एक कुछ भाइयों से बात करी और जिस प्रकार से मैं, भाई फ्रैंक, मैं ये गवाही दे सकता हूं कि प्रभु वहां खड़ा था और वो दाहिने तरफ प्रभु था और उसने मुझसे बात करी और एक एक शब्द उसी प्रकार से अनंत काल के लिए है। उसने मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करी और ये इस प्रकार होना चाहिए कि प्रभु का वचन आप सबसे भी व्यक्तिगत रूप से बात कर सके। आप देखें कि हम कहाँ हैं और देखिए और प्रभु का जो वचन है इसके बारे में प्रभु हम सबको इस वर्ष में आशीष दे और ये हमारे लिए स्वतंत्रता का वर्ष आ जाए, साल आ जाए कि हम प्रभु के कलाम में और बहाली में पूरे हो जाएं और प्रभु और अपने अनुग्रह से और अपने फजल से हमें मालामाल करे, हमें भर दे और सभी भाषाओं में और सभी देशों में और सभी लोगों में प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। सारे भाइयों के लिए भी जो कि अनुवाद करते हैं, जो सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं, प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। उन सभी भाइयों के लिए जो टेक्निक में हेल्प करते हैं और जो सारे के सारे जो सारे के सारे सरमन ही ब्रॉडकास्ट किए जा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इन चीजों का अनुभव कर सकते हैं, ये आखिरी बात को हम अनुभव कर सकते हैं और इसका हम अनुभव कर सकते हैं भली प्रकार से। और हम जानते हैं, हम इस बात को देखें कि हम प्रभु के सामने ये बहुत जरूरी समय है, बड़ा ही आवश्यक समय है, जबकि इंसान की जो इतिहास है, मनुष्य जाति के इतिहास में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और प्रभु का जो वचन है उसके वचन में ये जो बातें सुन सकता है वो सुने इस बातों को कि आत्मा आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सुने इस बात को, आत्मा की आवाज को सुने। और इस आखिरी आवाज में, इस आखिरी संदेश में, क्योंकि इसमें हमारी तैयारी इसमें पाई जाती है और हम उस बात को जानें। और इसमें जैसा हमने शुरू में पढ़ा, कोई भी प्रभु का वचन जो प्रभु ने भेजा है, जो प्रभु के मुख से निकला है, वो कोई भी शब्द जो आपको और मेरे लिए प्रभु ने भेजा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ करके जाएगा जिससे कि वो मेरे अंदर और आपके अंदर वो उस काम को पूरा करेगा, उस मकसद को पूरा करेगा जिसके लिए उसको भेजा गया था, और उस चीज को पूरा करेगा जो प्रभु ने अनंत काल से ठहराया हमारे उद्धार के काम के लिए। और ये यस है और ये हाँ है और ये आमीन है, जैसे कि प्रभु के सारे वादे अपनी जगह खड़े हैं, पूरे होते हैं, ये भी हाँ और आमीन है, और इनका पूरा होना बहुत जरूरी है हम लोगों के जीवन के अंदर। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। मेरे सारे तहे दिल से मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ कि हम इन चीजों का अनुभव कर सके वास्तविक रूप से अपने जीवन में। बाहर बुलाया जाना, फिर अलग किया जाना, फिर तैयारी, आपके लिए ये बड़ा आशीषित हो। और सभी जगह पर जो कठिनाइयां और जो परीक्षाएं हम पर आती हैं, हम पर दिक्कतें आती हैं, वो सब जगह आती हैं, पर हम अपने मान को, अपने विश्वास को, वो हमारे साथ है और उसने वो हमारे साथ है और हमारे इस संसार के अंत तक वो हमारे साथ है, जब तक वो नहीं आता और जब तक वो आकर के हमें अपने साथ नहीं ले जाता। और तब ये दुख मुसीबत और ये कष्ट और ये तंगियां ये सब पीछे रह जाएंगी, हम इन सब से ऊपर चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे और हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। और प्रभु के नाम को बड़ी आशीष और महिमा मिले, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। एक बार फिर कहा जाना जरूरी है कि हम विश्वास करते हैं, हम कंप्लीट उस पूरे के पूरे उद्धार के काम में, जिससे कि हमारी आत्मा और हमारा शरीर, हमारा प्राण, सबका उद्धार हो, कुछ भी बाकी ना रह जाए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और पुराने और नई वाचा के लिए और नए ऐतनामे के लिए और पुराने के लिए उसका धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि जो भी उसने हमें दिया वो उसने अपने अनुग्रह के द्वारा दिया। और हम धन्यवाद करते हैं कि वो दोबारा आने वाला है और हमारा प्रभु और हमारा बचाने वाला है और हमको अपने साथ महिमा में लेकर जाने वाला है, और उसी के नाम को सारी महिमा मिले और अनंत से अनंत काल तक उसी के नाम को महिमा मिले। बहुत आशीषित हों, आपको बड़ी आशीषें मिले और सर्वशक्तिमान खुदावन की आशीषें आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिले। आमीन।
Amen.